अर्पा रेडियो पर सुनते हैं कार्यक्रम बोलती कहानियाँ। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शकुंतला ब्रजमोहन की लिखी कहानी संज्ञा टंडन की आवाज में। कहानी का नाम है चक्रव्यूह। सेठ बद्रीनाथ मायूस स्वर में पत्नी राधिका से बोले, अब तो घर काटने को दौड़ता है। अब तक आशा थी कि हमारे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, पर आज डॉक्टर की बात सुनकर दिल टूट गया। इतनी संपदा किसके काम आएगी जब घर में कोई उसे भोगने वाला ही नहीं होगा। हमारे कभी संतान नहीं हो सकती, ये डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया है, पर मेरे कारण तुम भी इस सुख से वंचित रह गई हो, वरना तुम में तो कोई खराबी नहीं है। तुम माँ बन सकती हो, पर मैं ही तुम्हें माँ नहीं बना सकता। राधिका ने पति को सांत्वना देते हुए कहा, आप मेरे लिए दुखी ना हो, आप मेरे सब कुछ हैं। मुझे पुत्र की आकांक्षा नहीं है, बस भगवान आपको स्वस्थ रखे और लंबी उम्र दे, यही कामना है। सेठ जी ने कहा, राधिका, किसी भी स्त्री को मातृत्व सुख से वंचित करना मैं अपराध मानता हूँ। तुम मुझे कितनी ही सांत्वना क्यों न दो, पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हम दोनों ही पुत्र सुख पाने के लिए अत्यंत ललायित हैं। राधिका ने कहा, आप इतना व्यग्र क्यों हो रहे हो? ये सुख तो हम किसी नवजात शिशु को गोद लेकर भी पा सकते हैं। सेठ दृढ़ शब्दों में बोले, नहीं राधिका, गोद लिए बच्चे में न जाने किसका खून होगा। वो किसी दुराचारी का भी हो सकता है, ऐसा खतरा मैं मोल नहीं लूंगा। कम से कम हम दोनों में से एक का खून तो हमारे बच्चे में होना चाहिए। राधिका ने आश्चर्य से पूछा, एक के खून से बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? सेठ जी शांत स्वर में बोले, महाभारत की कथा तो तुमने पढ़ी है, पांडु धृतराष्ट्र विदुर का जन्म कैसे हुआ, कुंती के पुत्र कैसे पैदा हुए। ये कहना कि ऋषियों या देवताओं से पैदा हुए, ये सरासर गलत है। उस समय भी पर पुरुषों का आश्रय लेकर संतान पैदा की जाती थी। आदिम काल से संतान की लालसा हर एक को होती है। राजा को अपने उत्तराधिकारी को पाने के लिए ये करना पड़ता था, और जो प्रथा पुरातन काल में थी उसे हम क्यों ना अपनाएं? मुझे ये तो संतोष तथा एहसास रहेगा कि हमारे पुत्र में एक हिस्सा तुम्हारा रहेगा। लज्जा क्रोध तथा बेबसी से राधिका का चेहरा लाल हो गया। वो बोली, आप मुझे पर पुरुष से संपर्क स्थापित करने को कह रहे हैं? बच्चे का सुख भोगने के लिए आप इतने नीचे गिर जाएंगे, ये तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। सेठ जी ने गंभीर होकर कहा, हाँ, बच्चे का सुख पाने के लिए कभी कभी सदाचारी को भी निम्न कार्य करने को बाध्य होना पड़ता है। मैं ऐसे सदाचारी पुरुष खोजूंगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा गुण हों। राधिका की आंखों से टपाटप आंसू गिरने लगे। वो रुंधे कंठ से बोली, क्या कोई सती स्त्री अपने होश हवास में किसी पर पुरुष को अपना अंग छूने दे सकती है? नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी पर यह व्यभिचार नहीं करूंगी। सेठ जी दृढ़ स्वर में बोले, अगर तुम्हें मेरी जिंदगी प्रिय हो तो हठ मत करो। जिस स्त्री की रामायण तक पढ़ने की क्षमता हो, पति को परमेश्वर मानना जिसने अपना धर्म समझा हो, उस नारी के लिए यह व्यभिचार कितना घातक तथा मर्मांतक था। उसने सोचा, पति के लिए पत्नी अपनी जान देने में नहीं हिचकती, आज मुझे भी अपनी जान देनी होती तो मैं सहेज दे देती। पर जान देने और वेश्या बनने में बहुत फर्क होता है। जान देने में कोई कष्ट नहीं होता, पर इस व्यभिचार के बाद वो नारी जीवन पर्यंत जिस नरक की आग में जलती रहती है, उसे तो कोई भुक्त भोगी ही समझ सकता है। राधिका का चेहरा देखकर सेठ जी समझ गए कि उसे असहनीय कष्ट हो रहा है। उन्होंने प्यार से उसका हाथ दबाते हुए कहा, राधिका, मैं जानता हूँ तुम जैसी पतिव्रता को बहुत कष्ट हो रहा है, पर विश्वास मानो राधिका, ये राज कोई नहीं जान पाएगा। ना तो तुम उस पुरुष को देख पाओगी और ना ही वो तुम्हें देख पाएगा। तुम दोनों के चेहरे काले कपड़े से ढके होंगे, वो पुरुष तक नहीं जान पाएगा कि मैं कौन हूँ। सेठ जी ने उसी रात उस सदाचारी पुरुष का चुनाव कर लिया। रात के अंधेरे में काले कपड़े से अपना चेहरा ढक कर वो उस व्यक्ति के घर पहुंच गए। पिस्तौल की नोक पर उसे क्या करना है समझा कर, उसके चेहरे को काले कपड़े से बांध कर अपने घर के एक कमरे में पलंग पर बिठा कर वो चले गए। थोड़ी देर में अपनी पत्नी राधिका, जिसका चेहरा काले कपड़े से ढका था, उसी पलंग पर जिस पर वो आदमी बैठा था बैठा कर निकल गए। थोड़ी देर बाद उस आदमी को अपनी गाड़ी पर उसके घर छोड़कर लौट आए। 9 महीने बाद ही राधिका ने पुत्र को जन्म दिया। बच्चे की शक्ल सेठ जी पर पड़ी थी, क्योंकि राधिका ने 9 महीनों में सिवा सेठ जी के किसी भी पुरुष की तरफ ठीक से दृष्टिपात भी नहीं किया था। वो भगवान से यही प्रार्थना करती रही कि उसे पुत्र हो और वो सेठ जी का प्रतिरूप हो। शायद भगवान ने उसकी दोनों प्रार्थनाएं सुन ली थी। बच्चा बड़ा ही हंसमुख और चंचल था। वो जब किलकारियां मारता, घर में इधर उधर दौड़ता, तो वात्सल्य स्नेह से सेठ जी का हृदय नाच उठता। पर राधिका के गले में जब वो अपनी स्नन्ही बाहें डालकर उससे लिपटता, तो एक बार वो ललक कर उसका मुंह चूमती, पर दूसरे ही क्षण उसका चेहरा फक पड़ जाता। उसे लगता जैसे कोई विषैला सांप उससे लिपट गया हो। कभी कभी वो चीख मार कर पीछे हट जाती, तब बच्चा हंसकर कहता, माँ तुम डर क्यों गई, मैं तो तुमसे प्यार कर रहा था। सेठ जी राधिका की मना स्थिति समझते थे। वो समझाते, राधिका अगर ये पाप है तो इसका जिम्मेदार मैं हूं, अगर भगवान सजा भी देगा तो मुझे। तुमने तो एक पतिव्रता नारी के समान वही कुछ किया जिसे मैंने करने को कहा, पर ये विश्वास करो कि हम दोनों में से कोई अपराधी नहीं है। ये तो एक होनी थी कि हमें बच्चा इस प्रकार मिलना था, इसे प्रभु की इच्छा तथा विधि का विधान समझो, जिसे हम मिटा नहीं सकते। बच्चे का नाम रवि रखा गया क्योंकि वो स्कूल में सूर्य के समान प्रकाश फैलाने वाला था। रवि बड़ा मेधावी और आज्ञाकारी था। जो भी उसे प्यार करता वो उससे लिपट जाता। घर के सभी नौकरों की आंखों का वो तारा था। जैसे ही सेठ जी के मुंशी शंभू दयाल आकर जवाब देते, छोटे सरकार कहाँ हो, वो भागता हुआ आकर उनसे लिपट जाता। फिर रूठ कर कहता, मुंशी काका आप हमें छोटे सरकार मत कहा कीजिए, हमारा नाम रवि है, हमें रवि कहकर बुलाया कीजिए। मुंशी जी प्यार से उसका माथा चूमकर कहते, आप हमारे लिए रवि नहीं छोटे सरकार ही रहेंगे। मुंशी जी का घर में बहुत आना जाना था, इस कारण भी रवि उन्हें बहुत प्यार करता था तथा हिल मिल गया था। एक दिन एक 4 साल की बच्ची को लेकर मुंशी जी सेठ जी के पास आए और बोले, बड़े सरकार ये बच्ची मेरे दूर के रिश्ते की बहन की अमानत है, मरते समय इसे मेरी गोद में डालकर मेरी बहन चल बसी। ये कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। सेठ जी बोले, मुंशी जी इस बच्ची की चिंता मत कीजिए, ये रवि के संग खेला करेगी, रवि को भी एक साथी मिल जाएगा, सेठानी जी इसका भी ख्याल रखेंगी, आप चिंता से मुक्त होकर काम में लग जाइए। ये कहकर उन्होंने बच्ची से पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है। रश्मि ने लजाते हुए कहा, हमारा नाम रश्मि है। सेठ जी खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, वाह मुंशी जी दोनों बच्चों के नाम कितने मिलते जुलते हैं, रवि और रश्मि। अब सेठ जी का घर बच्चों की किलकारियों से गुंजरित रहता। कभी वो झगड़ते तो कभी मान मनोवल होता। वो बाल लीला देखकर सेठानी राधिका भी धीरे धीरे सब कुछ भूलकर बच्चों में रम गई। रवि तथा रश्मि दोनों ही संग संग स्कूल जाने लगे। सेठ जी या राधिका ने कभी नहीं सोचा कि रश्मि उनके मुंशी की बहन की लड़की है। वे दोनों उसे रवि के समान ही प्यार करते थे। रवि और रश्मि अब एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। क्योंकि मुंशी जी की पत्नी की मौत जवानी में ही हो गई थी, इस कारण घर में किसी स्त्री के न रहने के कारण रश्मि सेठ जी के घर में ही रहती थी। वो सेठ जी को पिता तथा राधिका को माता समझने लगी थी। वो अधिकार से उसी प्रकार अपनी बात मनवाती जैसे बच्चे अपने माता पिता से मनवाते हैं। रवि 20 साल के ऊपर का था और रश्मि 18 की। बचपन से एक दूसरे के संग रहते रहते दोनों एक दूसरे के स्नेह पाश में बंध गए थे। अचानक एक दिन राधिका को हृदय का दौरा पड़ा और कुछ घंटों के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। सेठ जी पर तो वज्रपात हो गया। रवि और रश्मि का रोते रोते बुरा हाल हो गया। आखिर सेठ जी ने अपने को संभाला। उन्होंने रवि तथा रश्मि के आंसू पोंछते हुए रुंधे कंठ से कहा, बच्चों अब मैं ही तुम्हारा पिता और माता दोनों हूं। तुम दोनों को रोते देख मैं अपने को संभाल नहीं पाऊंगा। अब तुम दोनों मेरा सहारा बनो और मैं तुम्हारा। समय अपने भुलावे की चादर किस पर नहीं डालता। धीरे धीरे करके सेठ जी तथा रवि और रश्मि सामान्य होने लगे। राधिका की मृत्यु को 3 साल हो गए थे। रवि की उम्र विवाह योग्य हो गई थी। सेठ जी ने लड़कियां देखनी शुरू कर दी थी। जब रवि को पता चला तो वो बोला, पिताजी मैं किसी ऐसी लड़की से विवाह नहीं करूंगा जिसे मैं जानता नहीं। हो सकता है वो लड़की झगड़ालू प्रवृत्ति की हो। जिस सुख शांति से हम रह रहे हैं वो आकर जहर भी घोल सकती है। मैं तो ऐसी पत्नी पसंद करूंगा जिसके स्वभाव से मैं भली भांति परिचित रह चुका हूँ, वो आए तो आपकी सेवा तथा सम्मान करे। सेठ जी मुस्कुरा कर बोले, बेटा, विवाह से पहले हम किसी लड़की के स्वभाव से कैसे परिचित हो सकते हैं? इसके सिवा कौन पिता अपनी बेटी को विवाह से पहले परिचित होने की छूट देगा? रवि बोला, तभी तो कह रहा हूँ कि मुझे ये जुआ नहीं खेलना है। रश्मि में वो सभी गुण हैं जो एक लड़की में होने चाहिए। मैं और आप उसके स्वभाव से परिचित हैं। वो बचपन से आपको पिता के समान सम्मान और प्यार देती आई है और आपने भी उसे अपनी संतान के समान ही प्यार दिया है। मुझे रश्मि बहुत पसंद है। मुंशी काका के पास पैसा ना हो पर उनसा सदाचारी व्यक्ति कहाँ मिलता है? सेठ जी खिलखिलाकर हंस पड़े। रश्मि बेटी को तो बचपन से मैं उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुमसे करता हूँ। मैं तो तुम्हारी वानगी देख रहा था। खुशी से रवि का चेहरा दमक उठा। पिता के पैर छूकर वो बोला, पिताजी आप कितने अच्छे हैं। रवि के हृदय में भविष्य के सपनों के फूल महकने लगे। वो छलांग लगाकर भाग खड़ा हुआ ताकि वो सुसंवाद रश्मि को सुना दे। सेठ जी ने सोचा, रश्मि मुंशी जी के दूर के रिश्ते की बहन की लड़की है, कोई उनकी लड़की तो है नहीं, ये विवाह होने में कोई हर्ज नहीं है। सेठ जी ने मुंशी को बुलाकर विवाह की तारीख निकलवाने का आदेश दिया। मुंशी जी का रोम रोम सेठ जी को दुआएं देने लगा। वो बोला, बड़े सरकार, आप मनुष्य नहीं देवता हैं जो मुझ अकिंचन की बहन की बेटी को अपनी बहू बना रहे हैं। रश्मि तथा मेरे तो भाग्य ही खुल गए हैं। अब रश्मि रवि को आता देख कर लजाकर भाग खड़ी होती। सेठ जी ये सब देखकर अपने भाग्य को सराहते। शायद अपने भाग्य पर उन्हीं की नजर लग गई थी। क्या वो जानते थे कि द्वार पर खड़ा दुर्भाग्य उन पर मुस्कुरा रहा था? रवि के विवाह को 15 दिन बचे थे। सेठ जी ने रश्मि की पसंद के गहने कपड़े सब खरीद लिए थे। रवि का विवाह वो बड़ी शान शौकत से करना चाहते थे। पैसे की कमी तो थी नहीं, फिर रवि उनका इकलौता बेटा था। पर हमरे मन कछु और है और कर्ता के कछु और। विवाह के 10 दिन पहले एक रात सेठ जी को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें लगा कि उनका अंत समय करीब है। उन्होंने रवि से कहा, मैं एकांत में मुंशी जी से कुछ बातें करना चाहता हूँ। मुंशी जी भागे भागे आए। सेठ जी बोले, मुंशी जी, मेरा अंत समय करीब है, मरते समय पाप बटोर कर नहीं जाऊंगा। रवि आपका बेटा है, याद रखिए, उस अंधेरी रात को जब एक अजनबी जिसके चेहरे पर काला कपड़ा बंधा था पिस्तौल की नोक पर आपको ले गया था, वो मैं ही था। रश्मि तो आपकी दूर की बहन की बेटी है, उसका विवाह आपके बेटे से जरूर कर दीजिएगा। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मैं पापी तो ये विवाह नहीं देख पाऊंगा। ये कहते कहते उनकी सांस फूलने लगी। मुंशी जी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो गिरते गिरते बचे। वो केवल इतना ही कह पाए कि ये विवाह नहीं हो सकता। पर ये बात सुनने के पहले ही सेठ जी चल बसे थे। मुंशी जी के चेहरे से लगता था कि उनके शरीर का रक्त किसी ने चूस लिया हो। रवि तो स्वयं बिलख रहा था। उसने सोचा कि मुंशी काका पिताजी को बहुत प्यार करते थे, इस कारण उनकी ये दशा हो गई है। 15 दिन बाद मुंशी जी ने रवि को एकांत में बुलाकर कहा, रवि बेटा, ये विवाह नहीं हो सकता। बस ये जान लो कि रश्मि तुम्हारी बहन है। रवि का चेहरा फक पड़ गया। उसने आश्चर्य से पूछा, काका, आप ये क्या कह रहे हैं? पिताजी की सहमति से ये विवाह तय हुआ था। विवाह की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब आप कह रहे हैं कि वो मेरी बहन है? ऐसा नहीं हो सकता। मुंशी जी सिसकते हुए बोले, मृत्यु के पहले सेठ जी ने मुझे एकांत में बुलाकर कहा कि तुम मेरे बेटे हो। रवि तैश में आकर बोला, आज आपको सब कुछ बताना पड़ेगा वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। मुंशी जी बिलखते हुए बोले, रश्मि मेरी अपनी बेटी है। एक रात एक स्त्री भागती हुई मेरे घर आई। गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। मैंने उसे शरण दी। 2 दिन बाद मैंने उससे कहा कि अब वो यहाँ नहीं रह सकती वरना मेरी बदनामी हो जाएगी। मेरी पत्नी जवानी में मर गई थी। घर में कोई दूसरी स्त्री के ना होने के कारण मैं बदनामी नहीं लेना चाहता था और ना ही उससे विवाह करके हंसी का पात्र बनना चाहता था। उस स्त्री ने रोते हुए कहा, अगर आप मुझे शरण नहीं देंगे तो सिवा कोठे के मेरे पास कोई स्थान नहीं रहेगा। आप मुझसे विवाह नहीं कर सकते तो मैं रखेल बनकर रह लूंगी। कोठे से तो अच्छा यही होगा। उसके बहुत गिड़गिड़ाने पर मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसे रख लिया। रश्मि जब 4 साल की थी तभी उस स्त्री की मृत्यु हो गई। मैंने लोगों के पूछने पर यही कहा कि रश्मि मेरी दूर के रिश्ते की बहन की लड़की है। यही बात मैंने सेठ जी से भी कही थी। यही मेरी कहानी है। रवि ने कहा, अगर वो आपकी बेटी है तो क्या हुआ, पर मैं आपका बेटा कैसे हो गया? जब मुंशी जी ने उस रात का किस्सा जब सेठ जी उन्हें पिस्तौल की नोक पर ले गए थे कह सुनाया, एक गहरी सांस लेकर मुंशी जी बोले, सेठ जी की मृत्यु के पहले मुझे ये राज मालूम नहीं था, पर मृत्यु शैया पर पड़े सेठ जी ने जब ये राज खोला तभी मुझे मालूम हुआ था। सेठ जी को ज्ञात नहीं था कि रश्मि मेरी बेटी है। वो तो यही समझते रहे कि रश्मि मेरी बहन की लड़की है। अगर उन्हें पता चलता कि रश्मि मेरी बेटी है तो वो विवाह को कभी सहमति नहीं देते। तुम दोनों मेरी संतान हो, ये कहकर मुंशी जी बेहोश हो गए। एक तेज अंधड़ रवि के दिमाग में घूमने लगा। बेबसी, दुख, नैराश्य तथा क्रोध की एक अंतहीन डोर बलखाती सर्प की तरह उसे जकड़ने लगी। दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाकर वो बिलख उठा। उसके मुंह से इतना ही निकला, आप दोनों ने मुझे ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां से निकलना असंभव है। अपने सुख के लिए आपने मुझे नरक की ज्वाला में धकेल दिया है। उसे ऐसा लगा मन वो किसी अंधे कुएं में गिरता चला जा रहा हो।
लेखिका शकुंतला ब्रजमोहन के कहानी संग्रह चक्रव्यूह की कहानियों का ऑडियो रूपांतरण।
ये थी arparijo.com की प्रस्तुति।